ओम शांति। परिवर्तन पथ पर इस श्रृंखला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और हम सबके बीच आज आदरणीय सूर्य भाई जी हैं, आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और सूर्य भाई जी के अनुभवों से तो हम लोग बहुत लाभान्वित होते रहते हैं, लेकिन आज हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम आपके जीवन के अनुभव सुने। ज्ञान तो आपसे हम सम्मुख में भी सुनते हैं, यूट्यूब के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से सुनते रहते हैं, लेकिन आज हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम आपके जीवन के कुछ ऐसे अनुभव सुने जो शायद अब तक हम ना सुन पाए हों, और जो अनुभव हमें बहुत प्रेरित करते हैं हमें साधना के मार्ग पर आगे जाने के लिए। सूर्य भाई जी, आपका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 1950 में हुआ था और एक छोटी सी आयु में, 14 वर्ष की आयु में, 64 में ही आपको ये ज्ञान मिल गया था। हालांकि ज्ञान को समझने के लिए आयु बहुत छोटी होती है, लेकिन जो इस तरह की आत्माएं होती हैं उनके लिए आयु की कोई सीमा नहीं होती है। और 1968 में यानी 18 वर्ष की ही अल्पायु में आपने अपने जीवन को यज्ञ में समर्पित भी कर दिया था। इस दौरान आपने अपनी शिक्षा भी पूरी की, मेरठ यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। आप विज्ञान के छात्र रहे हैं, लेकिन ग्रेजुएशन के साथ साथ आपकी जो सेल्फ स्टडी है वो बहुत समृद्ध है। आप मनोविज्ञान पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, और न सिर्फ मनोविज्ञान बल्कि और भी दुनिया के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आपकी गहरी समझ है। आपने भारत के साथ साथ विदेशों में भी बहुत सेवाएं की हैं, बहुत सारे पाश्चात्य देशों में और भी बहुत सारी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में आपने अपनी सेवाएं दी हैं। तो एक बहुत लंबा चौड़ा वृहद अनुभव है आपका। बहुत समय न लेते हुए हम आज भाई जी के अनुभवों को सुनेंगे, और सबसे पहला हम भाई जी से ये जानना चाहेंगे कि आप पहली बार बाबा से कब और कैसे मिले।
पहली बार 1968 जून में, जब मैं दिल्ली रजौरी गार्डन की पार्टी के साथ यहाँ पर आया, वो मिलन तो अद्भुत था।
थोड़ा सा कुछ बाबा से कैसे मिलने, और बाबा को आपने कैसे देखा, क्या फीलिंग आई, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएं।
क्योंकि बात बहुत पुरानी हो गई है, 52 साल पहले की, तो बहुत सारी चीजें विस्मृत हो जाती हैं, लेकिन मैं बाबा को देखता ही रह गया और ये सोचता था ये हैं ब्रह्मा जिनके तन में भगवान आए। और जब हमारी ट्रेन दिल्ली से पहुंच रही थी इधर की ओर, और लोगों ने बताया कि ये स्वरूपगंज से पहले से ही दिखने लगता है आबू पर्वत है, तो मेरा मन मग्न हो गया। ये सोच सोच कर मैं पर्वत को ही देखता रहा कि वाह, इस पर्वत को भगवान ने चुना, इस पर उसके कदम पड़े। बहुत मगन अवस्था हो गई। क्या क्या सोचा था ये तो अब याद नहीं, पर वो आधा पौना घंटा इस मगन अवस्था में बीत गया। बाबा 3 बार तो मिलते ही थे। जब हमारी पार्टी पहुंची, इधर से पिछले गेट से आया करती थी जो पांडव भवन का है, तो वहां कुछ था नहीं, पत्थर पड़े होते थे, दरवाजा भी कुछ छोटा सा था, उसको कूद के आ सकते थे। तो उधर से हमारी पार्टी आई तो बाबा अपने कमरे के बाहर जहां चप्पले उतारते थे ना पहले, जहां भंडारी रखी आजकल, वो आगे की दीवार बड़ी नहीं होती थी, 2-2.5 फुट की, तो उसके अंदर खाट जो होती है बाणों की, उस पे बाबा बैठे हैं, वैसे ही जैसे बैठते हैं बाबा पैर पे पैर चढ़ा के। और हम आए तो अचानक देखा बाबा, फिर वही स्थिति हुई, देखते ही रह गए, रुक गए हम, हमें कहाँ जाना है ये तो भूल ही गए, कमरा उमरा भी लेना है क्या किसी से, और देखते ही रह गए। फिर हमारे साथ जो दीदी आई थी वो हमें ले गई। तीन बार बाबा मिलते थे, व्यक्तिगत भी मिलते थे। एक बार व्यक्तिगत बहुत अच्छी मुलाकात हुई, पार्टी पूरी पीछे बैठ जाती थी, एक एक मिलते थे। तो बाबा ने मेरे से पूरा सब कुछ पूछा, लौकिक अलौकिक सब पूछते थे। और दृष्टि जो दी तो मैं शरीरी हो गया, और वो अशरीरीपन लंबा काल चला। मुझे याद है जब तक मैं वापिस जाने में आबू रोड पहुंचा तब तक वो फुल फोर्स से चला। ये तो बाद में पता चला कि ये बाबा का वरदान हो गया था। तो बहुत अच्छी मुलाकात हुई और हुआ बस यहीं रहना है, जाके क्या करेंगे दुनिया में, यहीं रहना है। और फिर तो बाबा ने खींचा, चारों ओर से वैराग्य आ गया और आ गए।
जी जब आप पहली बार आए थे तो आप कितने दिन यहाँ रुके थे, और उन दिनों पार्टियां जो आती थी उसकी संख्या क्या होती थी?
हम 7 दिन रुके थे यहाँ, और बाबा के रूम के सामने जो हवाई महल है, जिसको हवाई महल कहते हैं, आपको याद हो, बिल्कुल सामने वहां हम ठहरे थे। तो मैं रात को छत पे घूमता था, देखता था बाबा बेड पर मच्छरदानी में योग में बैठे हैं। सवेरे हम भी 3 बजे उठ जाते थे जल्दी, उठते फिर बाहर आता था, देखता था बाबा फिर बैठे हैं। मैंने कहा बाबा सोते हैं या नहीं सोते हैं, फिर पता चला बाबा तो जल्दी उठ जाते हैं। और बहुत जबरदस्त साधना होती है। 7 दिन हम लोग रहे, और पार्टी तो 100 से कम कम। बाबा का लेटर चला जाता था कि बहुत हो गए बच्चे, अभी नहीं आओ, क्योंकि एकोमोडेशन बहुत थोड़ा था। मैं समझता हिस्ट्री हॉल भरता था, बस इतनी ही पार्टी होती थी 100 के अंदर अंदर।
भाई जी, आप 68 में बाबा से पहली बार मिलने के लिए यहाँ आए, तो मधुबन में क्या उसी समय पहली बार आए थे या इसके पहले भी आप आ चुके थे?
उसी समय में पहली बार आया था। और आते ही मुझे याद रहता है पिछले गेट से आए तो वहाँ एक रूम है जहाँ प्रेस करते थे, जहाँ कपड़े छंटते हैं, बहुतों ने देखा होगा। तो वहाँ बहुत सारी दादियाँ थी, काम कर रही थी। मुझे लगा ये सब अपने हैं, और ऐसा लगने लगा कि मैं यहीं का हूं बस। ये बहुत डीप फीलिंग पहली दृष्टि में ही प्राप्त हो गई थी।
भाई जी, आप 68 में आए, आपको ज्ञान 64 में मिला, इस बीच में 4 वर्ष का गैप है, तो हम थोड़ा सा उस विषय में जानना चाहेंगे कि समर्पित होने से पहले आपका ये जो 4 वर्ष था वो कैसा था, और आपको ये ज्ञान मिला कैसे?
हमारे अंकिल थे दिल्ली रजौरी गार्डन में, वो हमारे घर में गए तो छोटी सी राजयोग की किताब छोड़ आए वहाँ। उन दिनों इतनी किताबें तो थी नहीं, बस मैंने वो पढ़ा, योग लगाया, योग लगा, मुझे ऐसा लगा प्रभु मिलन हो गया और मुझे खिंचाव हो गया। मैं योग करता रहा, फिर वो आए, मुझे याद नहीं कितने एक साल बाद आए होंगे, उन्होंने प्रदर्शनी अंक मुझे समझा दिया, सारा ज्ञान हो गया। बस ये कहानी आने की है। और पढ़ने में बिजी थे, बहुत ध्यान था, उधर सेंटर नहीं था, इस तरफ मेरठ में, उधर सहारनपुर में, 2 सेंटर थे। तो हम छोटे थे, इतना किससे परिचय नहीं था। फिर एक बहन से परिचय हुआ, आपको ख्याल हो दिल्ली में कवि जी हैं, उनकी बहन, वो सब उधर गई हैं, उनसे घनिष्ठता हुई। तो फिर थोड़ा सा आना जाना हुआ, मुरली क्या है ये पता चला, उससे पहले ज्ञानामृत ही पढ़ते थे, मुरली कुछ समझ में नहीं आती थी ज्यादा, लेकिन योग बहुत अच्छा लगता था, पढ़ाई पे बहुत ध्यान रहा। फिर कॉन्टेक्ट हो गए पत्रों से, सुदेश दीदी भी बैठी है, तब ये रजौरी में टीचर थी, इनसे भी हमारा कॉन्टेक्ट हुआ, बहुत खुशी हुई हमें, इन्होंने हमें पत्र लिखा, प्रश्न पूछे, हमने उत्तर दिए, बड़ा अच्छा रहा। ऑलराउंडर दीदी रहती थी, ऑलराउंडर दादी, गुलजार दादी की माँ, रजौरी गार्डन में वही दिल्ली की इंचार्ज थी, उनके पास गए, मिलाया हमें, समीपता हुई सबसे। तो पढ़ाई पे बहुत ध्यान था, और पढ़ाई में अनेक ड्रीम्स थे भविष्य के, तो लेकिन फिर जैसे बाबा को देखा वो सब ड्रीम समाप्त, एक ही ड्रीम रह गया यहीं।
भाई जी, ज्ञान में आने से पहले मैंने सुना है कि आप आर्य समाज से जुड़े हुए थे, आपका पूरा परिवार आर्य समाज से बहुत डीपली एसोसिएटेड था, पर जनरली ऐसा होता है कि जब एक पंथ से हम दूसरे पंथ में शिफ्ट होते हैं तो बहुत सारे वैर विरोध का सामना करना पड़ता है। तो क्या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आपके जीवन में भी आई आर्य समाजियों की ओर से, पहला प्रश्न। और इसी में एक दूसरा प्रश्न भी ये जानना चाहेंगे कि आप आर्य समाज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो उन दिनों बहुत पॉपुलर था ये समाज, बाबा के घर में ऐसा क्या यूनिक दिखा जो आपने उसको छोड़ करके इसको अपनाना बेहतर समझा?
मैंने इन्हीं दिनों जब मुझे ज्ञान मिला तो आर्य समाज की संपूर्ण फिलोसफी का अध्ययन कर लिया और मुझे स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवन कहानी ने बहुत ज्यादा आकर्षित किया। तो जैसे ही पता चला कि भगवान आए हैं तो मेरे मन में ये उमंगे उठने लगी कि अगर एक वेदों का विद्वान संसार में एक बड़ा आंदोलन ला सकता, क्योंकि उसने बहुत बड़ा आंदोलन ला दिया था, जो नॉर्थ इंडिया है वो आर्य समाज से बहुत ज्यादा जुड़ गया था, तो घर घर में प्रचार हो गया था, अच्छे सिद्धांत सिखाए जाते थे, ब्रह्मचर्य सिखाया जाता था, वो हमने पहले ही सीख लिया था ज्ञान में आने से पहले, हवन संध्या 5 हवन रोज करने होते थे, हमारे घर में भी होते रहते थे, हम लकड़ी वकड़ी ला के तैयारी करा देते थे, हमारा इतना ही काम था बस। तो अध्ययन मैंने कर लिया और पता चला कि भगवान खुद आकर ज्ञान दे रहे हैं। मुझे स्वामी दयानंद के दिए गए तर्क बहुत प्रिय लगते थे क्योंकि उसकी फिलोसफी अलग थी पहले वाली फिलोसफी से। उसने ये सिद्ध किया था आत्मा परमात्मा और प्रकृति तीनों अलग अलग हैं, आत्माएं भी अनेक हैं, आत्मा सूक्ष्म है, बस अंतर एक ही था कि भगवान सर्वव्यापी। वो तो अभी वहां मान्यता यही है चारों ओर, तो उससे अलग तो कोई जा नहीं सकता। तो बहुत अच्छा लगता था मुझे जब पता चला भगवान आए हैं। तो हमारे एक रिलेटिव हमारे फूफा जी लगते थे, वो अच्छे एजुकेटेड थे, लेक्चरर थे, फिर वो प्रिंसिपल हुए, वो हमारे घर में आए तो वो हमें बताते थे आर्य समाज का ये वो। मैंने उन्हें ऐसे ही नशे में कह दिया हमें तो भगवान मिल गया, तब पता कोई नहीं था, बाबा से नहीं मिले थे, पता नहीं कौन से साल की बात है। अब वो मुस्कुराने लगे और उन्होंने एक ही लाइन बोली, अगर तुम्हें भगवान मिल जाता तो तुम यहां थोड़ा ही होते। ये बात बड़े काम की थी, मैं उन्हें अपना प्रेरक मानता हूं कि उन्होंने मुझे जैसे प्रेरणा दे दी कि भगवान को मिलने के बाद उसके पास क्यों नहीं। तो बहुत अच्छा रहा और इसी बात ने फिर कंपेरेटिव स्टडी हो गई, पहले से रामायण महाभारत सनातन धर्म की स्टडी थी, फिर आर्य समाज की हो गई, फिर अपनी यहां ब्रह्मा कुमारीज की हो गई, तो एक बहुत सुंदर ज्ञान ये प्रतीत हुआ कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, क्लियर ज्ञान है, बहुत सहज ज्ञान है। कुछ प्रश्न ऐसे रह गए थे मन में जिनका उत्तर आर्य समाज भी नहीं देता था, वो यहां बिल्कुल स्पष्ट हो गए। जैसे वेदों में भी है परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, सूक्ष्मति सूक्ष्म है, फिर वो सर्वव्यापी भी है, दोनों में विरोधाभास है। मैं सोचा करता था दोनों बात कैसे हैं। तो ज्ञान की सत्यता और बाबा के आने पर एकदम बिना किसी कुछ देखे निश्चय हो गया था, मुझे इधर खींचा।
उनकी तरफ से कोई विरोध आया हो आपकी?
नहीं, विरोध कुछ नहीं हुआ, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि विरोध मुझे कुछ भी नहीं हुआ और सहज भाव से मैं यहाँ पहुंच गया।
उनकी तरफ से तो कोई विरोध का सामना नहीं हुआ, लेकिन क्या आपके घर वाले आपके समर्पित होने के डिसीजन से खुश थे?
नहीं, खुश तो नहीं थे हमारे पिताजी, क्योंकि मैं बड़ा था घर में। और सच तो यह है कि मेरे पिताजी को लोग मेरे कारण जान गए थे चारों ओर आसपास के गांव में, तो उन्हें कष्ट तो बहुत हुआ। लेकिन जब मैं पहली बार फिर कवि जी ने यहाँ पत्र लिखना शुरू किया दीदी मनमोहिनी को, क्योंकि वही मुझे लाई थी कि दीदी घर में ऐसा ऐसा हो रहा है, हम लोगों को भी कह रहे हैं इन्होंने हमारा लड़का भगा दिया है, पता नहीं कहाँ भेज दिया, सन्यासी बना दिया, पहाड़ों पर रहते, आबू में रहते हैं ना, पहाड़ों पे माना सन्यासी कोई गुफा में रहते होंगे। तो फिर दीदी ने मुझे कहा एक बार चक्कर लगा के आओ, तो मैं एक हफ्ते के लिए लौकिक घर गया, 69 एंड में गया था, और बस उन्होंने जैसे ही मुझे देखा सब संतुष्ट हुए, खुश हुए, बहुत अच्छा हो गया मेरा वो जाना और लाइन पूरी तरह से क्लियर उनकी ओर से। कुछ भी और जो निगेटिव संकल्प मनुष्य के चलते हैं वो खत्म हो गए, क्योंकि गांव वाले बहुत बोलते हैं ना, रिश्तेदार बोलते हैं, वो खत्म हो गया सब।
जी, जब आप यज्ञ में आए थे उस समय ये यज्ञ बहुत छोटा था। इवन हमने देखा कि जब हम लोग समर्पित हुए पांडव भवन में, उस समय ज्ञान सरोवर बना नहीं था, तो यज्ञ छोटा था, केवल एक पांडव भवन ही था, और उस समय यज्ञ में इतनी समृद्धि भी नहीं थी। यज्ञ में जो समृद्धि आई है वो ज्ञान सरोवर के बनने के बाद आई है। और हमें ये याद है कि पांडव भवन में जब हम लोग शुरू में आए और समर्पित हुए, तो अगर हमें एक साबुन भी चाहिए होता था तो 2 से 3 बार जाना पड़ता था। एक प्लास्टिक का चप्पल, वो भी अगर एक बार मिल जाए उसको बड़ा संभाल के रखना पड़ता था। तो यज्ञ जो है इस दौर से भी गुजरा है, लेकिन आज की स्थिति कुछ और है। आज बाबा के बच्चों के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो साधनों की अधिकता में हमारी साधना कहीं ना कहीं गुम होती नजर आ रही है। हम लोग साधनों में उलझते जा रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि आप जब ज्ञान में आए उस समय तो यहाँ पर और ज्यादा त्याग का माहौल था, और ज्यादा सादगी, और यज्ञ और भी छोटा, समृद्धि भी कम थी। उस समय तो आप लोगों को और ज्यादा परेशानी होती होगी स्थूल दृष्टि से। ऐसे में आप रहते हुए आपने इतनी कठोर साधना की, तो थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि उस समय के बारे में बताएं क्या माहौल था, ताकि हमें कुछ प्रेरणा मिले और हम ही इन साधनों से निकल करके साधना की ओर मुड़ सके।
निश्चित रूप से जब अध्यात्म में धन की वृद्धि होती है, साधनों की वृद्धि होती है, तो गड़बड़ होती है। हालांकि आप सब आजकल भी बहुत तपस्या कर रहे हो, मौज में रहते हुए भी ऐसी कोई बात मुझे नहीं लगती। मैं बुद्ध धर्म का पतन कैसे हुआ, मुझे इतिहास पढ़ने का बहुत शौक था और मैं पढ़ता था एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो बुद्ध धर्म का पतन कैसे हुआ, तो क्योंकि बुद्ध धर्म को बहुत सारे राजाओं ने स्वीकार कर लिया था, तो जो बोधि साधु होते थे, क्योंकि बोध विहार बनाए जाते थे, वो पैदल चलते थे, तो राजाओं ने उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा संपन्न बौद्ध विहार बनवा दिए थे। तो वो बहुत सुख से रहने लगे, फिर सुख से रहने लगे तो कईयों ने चलना छोड़ दिया, और उनमें जल्दी नहीं पर 1000 साल के बाद गिरावट आ गई, विकारों की ओर बढ़ गए। इसीलिए शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म का जो उस समय का सबसे बड़ा लीडर था और सबसे बड़ा विद्वान, उसको शास्त्रार्थ में हरा दिया और भारत को बौद्ध धर्म से समाप्त कर दिया। क्योंकि उन दिनों ये मान्यता थी, प्रथा थी, कि अगर कोई हार जाता है तो वो खत्म हुआ, बस उसकी मान्यता ही समाप्त हुई। तो यज्ञ में जब हम आए तो निश्चित रूप से साधारणता थी, लेकिन दादी इंचार्ज बनी थी। और बाबा के समय से एक बात बहुत महत्व की है कि बाबा खाना पीना बड़ा शाही रखते थे, कमी नहीं। कुछ ऐसा नहीं लगता था कि यज्ञ में कुछ साधारणता है तो खाना पीना भी साधारण हो, लेकिन साधारण भी होता था। जैसे पार्टी नहीं है तो शाम को केवल एक सब्जी बनेगी, कुछ नहीं। उन दिनों खिचड़ी चावल बनने की वो प्रथा नहीं थी, रोटी और एक सब्जी बनेगी। तो हमें तो अच्छा रहता था एक ही सब्जी बनानी शाम को। तो साधारणता तो थी, दवाइयां नहीं होती थी, तो क्या फायदा हुआ, दवाई डॉक्टर पैसा कम होने से ये जो बाबा एक लक्ष्य देता था कि तुम्हें योग बल से अपने को ठीक करना है, इसके अलग अलग अनुभव होने लगे सबको। क्या होता है जब साधन बहुत बढ़ जाते हैं या पैसा हो जाता है तो मनुष्य डॉक्टरों की ओर देखता है। अब दांत में जरा सा दर्द हुआ, भागो हॉस्पिटल, मुश्किल हो जाएगी। जरा सा बुखार हुआ, चलो हॉस्पिटल। तो उस समय ये था कि बुखार हुआ तो किचन काढ़ा बना, बुल्लादी ने दिया, पीने वाले ठीक हुए। दांत दर्द हुआ, किसने कोई पाउडर दिया, लगा लिया, दांत दर्द ठीक हुआ। बाबा की मदद बहुत होती थी उन दिनों। वतन से दवाइयां आती थी, सुदेश दीदी को पता है, फॉर्मूले आते थे, मेरे लिए भी आए 2 बार, बड़ा अच्छा लगता था, ठीक हो जाते थे। मेरे लिए आप हंसेंगे, खाने की इच्छा हो जाएगी। मुझे बुखार रहता था थोड़ा, दवाइयां तो होती नहीं थी। संतरी दादी जो थी, बाबा का रथ थी वो भी, वो सवेरे 3 बजे बाबा के रूम में बैठती थी, वो ध्यान में चली गई। बाबा ने मुझे दिखाया, कहा बच्चे को बुखार रहता है, 7 दिन देसी घी का हलवा खिला दूं। अब आपको भी खाने की, अब देखो बुखार की दवाई भगवान से क्या आई,
ऐसा बुखार तो सबको है।
और मैं, मुझे याद नहीं 7 दिन खाया या नहीं, पर मैं पहले दिन खाते ही ठीक हो गया, क्योंकि वो तो बाबा की उसमें सकास भरी हुई थी। तो ऐसे ऐसे आते थी चीजें। तो वो साधारण साधारणता तो थी, पर बाबा जैसे अव्यक्त हुए तो यज्ञ में वैराग भी बहुत हो गया था। उस वैराग का फायदा मुझे बहुत ज्यादा हुआ। तो हमें ये नहीं लगा कि कुछ कमी थी, हम तो एंजॉय किया, खूब आनंद लिया। वो तो अब देखने में लगता है ना, तब कम था अब ज्यादा है। किसी के पास साइकिल भी नहीं होती थी, हवाई चप्पल के अलावा कुछ नहीं, एक मफलर, एक छोटा सा स्वेटर बस, ठंडी में ऐसे ऐसे होता रहता था, ठंड लग रही है, कई बार वो अब अनुभव होता है उस ठंड का असर अब आया हुआ है, तो टांगों पे कमर पे। लेकिन बहुत एंजॉय किया, बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि संगठन बहुत स्वीट, सेवाएं हम लोग बहुत करते थे, थोड़े लोग होते थे ना, बहुत ज्यादा सेवा हम सब करते थे। ट्रक आया, दादी खुद आ जाती थी, दादी की अपनी बहुत बड़ी विशेषताएं थी, आओ 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 आओ, और 10 भाई पहुंच गए, आधे घंटे में ट्रक खाली। एक बार की छोटी सी घटना सुनाऊं, ये जो गेहूं है उनको धुलना था, अब 100 बोरी थी, स्टोर में थी, उसको शांति स्तंभ पे लाना था, वहां धुलना था। नौकरों ने मांगे 25 रूपये 100 बोरी के, 25 पैसे 1 बोरी के, उन दिनों 25 रूपये थोड़े कीमती थे हमारे लिए। दादी ने कहा भाई ये 25 रूपये मांग रहे हैं, भाइयों में उमंग था, हम लाएंगे दादी। दादी ने कहा तो देसी घी का हलवा मिलेगा सबको। सब फटाफट, गाड़ियां भी नहीं थी, हाथ गाड़ी नहीं होती थी, हाथ से उठा के सब बोरी माल आए और मुझे कहा दादी ने देसी घी का हलवा बनाओ। फिर दादी क्या विशेषता थी, हम डाल के देते थे, दादी अपने हाथ से गरम गरम खिलाती थी, यहीं बैठ के खाओ, यहीं बैठो, दादी के पास बैठो। तो वो दिन इस तरह बड़े आनंदकारी भी थे।
भाई जी, मैं जब इधर 93 में, मैं जब समर्पित हुआ 92-93 में, तो मेरे को आपने रोटी डिपार्टमेंट में वहां भेजा, तो मेरी वहां आटा बनाने की सेवा दी गई, और आटा सुबह 4 बजे आकर के बनाना पड़ता था। तो 4 बजे आना है तो निश्चित रूप से नहा धो के जाना है, तो 1 घंटा पहले उठना पड़ेगा। हम लोग नए नए थे तो योग में बहुत ज्यादा रुचि भी रहती थी, वो भी मिस नहीं करना चाहते थे। तो अमृत बेला योग भी करना है तो उसके लिए मैं 1:30 बजे, कई बार 2 बजे उठता था, और नहा धो करके मैं सबसे पहले बाबा के कमरे में पांडव भवन जाता था 2:30 बजे। तो उस समय मैं देखता था कि आगे कोई एक भाई बैठा हुआ है, मफलर उफलर पूरा बांध बांध के, चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा, मैं रोज देखता था। एक दिन मैंने सिक्योरिटी वाले भाई से बाहर, वो सब बड़े बड़े भाई हैं, डर तो लगता था, फिर भी हिम्मत करके पूछा कि इतना सुबह सबसे पहले आकर के कौन बैठता है रोज नियमित रूप से, तो मुझे बताया कि ये सूर्य भाई जी हैं, ये सूर्य भाई जी ये रोज आकर के। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने, अभी तो खैर आपके पास सेवाओं का इतना स्कोप है कि शायद अपने लिए समय कम मिलता होगा, लेकिन तब आपने बहुत साधना की है, बहुत कठोर साधना की है, तो थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएं।
बाबा के कमरे में बैठने का भी नियम नहीं था, ना उसको योग कक्ष बनाया गया था। और बाबा अव्यक्त हुए थे तो बहुत सारी जो पुरानी बहनें थी वो वहां जाते हुए थोड़ी सी हिचकती थी, क्योंकि उन्हें बाबा की सारी बातें याद आती थी। तो लेकिन मुझे आकर्षण होता था कि मैं बाबा के कमरे में जाऊं, तो मैंने 3 बजे उठा, और उधर से ही जाना होता था, बहने सोई होती थी, थोड़ा डर भी लगता था, बहने सोई है, मैं गया, अंधेरा ही अंधेरा, बाबा के कमरे में भी अंधेरा, चुपचाप किसी की खाट से न लग जाऊं, कहीं गिर न जाऊं, तो चुपचाप जाके बैठ गया। 4-5 दिन अंधेरे में बैठा वहां, 3 बजे ही होंगे सवेरे के, मुझे बड़ा आनंद आया, मैं जाने लगा, आवाज से संतरी दादी उठ गई, कहा कौन, मैं कहा मैं हूं दादी, क्या करने आए हो, मैंने कहा मुझे बैठना है, वो भी आ गई। अब वो आ गई तो बल्ब लग गया बाबा के कमरे में, बल्ब लगा हुआ था वो जलाने लगी, हम 2 बैठने लगे, फिर 2 से 3, 3 से 4, जब आने लगे तो फिर इधर का रास्ता बना, कि भाई इधर का गेट खोल दो उधर का बंद रखो। तो बाबा के कमरे में बहुत ही आनंद होता था। और मैंने शुरू में बस थोड़े से मैं बताऊंगा, तो बाबा के अव्यक्त होते ही मुझे लगन तेज हुई। और उसके बाद भी जब म्यूजियम बना हमारा, हम उसमें सेवा करते थे, किचन में नहीं थे, तो म्यूजियम की ओपनिंग में सभी बड़े बड़े लोग आए तो 100-125 हो गए। तो दीदी ने मुझे उसके बाद कहा तुम किचन में जाके माताओं को मदद करो। बस वहां मेरा किचन में जाना और मेरा योग श्रेष्ठ होना, बाबा की दृष्टि मिली थी। क्योंकि इस म्यूजियम की ओपनिंग करने के लिए अव्यक्त बाप दादा आए थे, वहीं हम मिले थे। क्योंकि हम सेवा में थे तो हमें आगे बैठाया गया था म्यूजियम की सेवा में। निर्वैर भाई बनवाने आए थे बॉम्बे से, वो मधुबन में तब तक नहीं रहते थे, वो 72 में आए थे। तो मैं किचन में आया, अपना चार्ट लिखता था योग का, हर घंटे में कितना मिनट योग किया। डायरी तो होती नहीं थी, कॉपियां। जमुना प्रसाद भाई जो मुरली में मिस खराब हो जाते थे ना कागज, उनकी कॉपी बना के देता था, मुरली लिखते थे वही मुरली रखता था, 5 बार पढ़ लिया। अभी मुरली बहुत चलती थी, थोड़ी देर किचन में पढ़ते पढ़ते देख लिया। 5 बार बाबा के रूम में जाना। हालांकि हंसी की बात सुनाओ, हमारी लच्छू दादी डांटती थी हमें, क्योंकि कपड़े किचन के होते थे रंगीन, पैर भी थोड़े से ऐसे वैसे, उसकी सफेद चादर खराब कर देते थे हम। कहती थी मैंने धो के अभी बिछाई थी, तुमने सारी खराब कर दी है। मैं कहता था दीदी मैं धो दूंगा, कोई बात नहीं। फिर हम पैर धो धा के जाने लगे, तो 5-5 बार जाने से लिंक बन गया, बहुत अच्छी एकाग्रता का अभ्यास हुआ। और मैं कई बार सुनाया, मैं तभी तभी योग दर्शन में वो पढ़ के आया था कि अगर कोई मनुष्य 32 मिनट तक एकाग्र कर ले अपने मन को तो उसको मनचाही सिद्धियां मिल सकती हैं। तो मैंने उसको अपना लक्ष्य बनाया था। अब एकाग्रता कहाँ करनी है ये अब तो हमें पता था, आत्मा पर, बाबा पर। तो बहुत अच्छी साधनाएं हुई और वो बहुत समय तक चली। चार्ट में वैरायटी लिखता रहा, मुझे बाबा की बहुत ज्यादा गाइडलाइन मिली। एक सुंदर बात सुना देना चाहता हूँ। कैलाश दीदी जो गांधीनगर में है, वो किचन में ही थी और वो ध्यानी भी है, तो रोज 2 बार जो भोग लगता था तो वो लगाती थी और ध्यान में जाती थी, संदेश लाती थी। तो हम 10-15 भाई भी बैठते थे साथ में, कभी बाबा के रूम में और कभी हिस्ट्री हॉल में। तो हर बार एक सुंदर संदेश आता था, 1 मिनट का, लंबा चौड़ा नहीं, और उसमें योग की अलग अलग विधि। तो मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा हमें रोज गाइड कर रहा है। वो समय बहुत सुंदर था, अच्छी अच्छी योग की विधियां। एक हंसी की बात सुना के इस बात को समाप्त करूंगा। वो भोग लगाने जा रही थी, सभी कह रहे थे दीदी बाबा को हमारी याद प्यार देना, हमारी याद प्यार देना। अब हमारे साथ ही तो सेवा करती थी, मैंने हंसी में कहा हमारी याद प्यार नहीं देना। हंस गए सब। तो भोग लगा, संदेश आया, तो ऊपर मैं ही था, तो मैं अपना चार्ट बाबा को दे रहा हूँ, ये बाबा ने दिखाया और बाबा ने संदेश दिया, बाबा को ऐसी याद प्यार चाहिए। बस
भाई जी, आपके पास एक लंबे ईश्वरीय जीवन का अनुभव है, करीब 50 वर्ष से अधिक समय हो गया इस ज्ञान मार्ग में चलते हुए, और आपने हजारों बार बाबा से मिलन बनाया होगा। दादियां तो आपको बहुत प्यार करती ही थी, खास बड़ी दादी बहुत प्रेम करती थी, हमने देखा भाई जी का बहुत सम्मान करती थी। यही कारण है कि जब ज्ञान सरोवर बना तो ज्ञान सरोवर में हम जो भी भाई बहने, करीब 200 भाई बहने समर्पित हुए, सबका जिम्मा दादी ने भाई जी को ही दिया था कि आपको ही सबको सिलेक्ट करना है, तो हम सब भी आपके ही सिलेक्शन है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने इतने बड़े, इतना लंबा जो यात्रा के, इसमें बहुत सारे अनुभव होंगे, कोई एक अनुभव ऐसा आप सुनाए जो हमें बहुत रोमांचित करता हो। हमने कई बार आपके मुख से भी सुना है और उसे भी सुना है कि बाबा आपको मुरली चलाते चलाते बीच में सभा से उठा देते थे, कहाँ है सूरज बच्चा, आप किचन में लंबी चौड़ी पार्टी है, समय नहीं है, आप किचन में सेवा कर रहे हैं, इधर बाबा आए हैं, और बाबा बीच में बोल पड़ते थे सूरज को बुलाओ, सूरज कहाँ है। एक बार तो मैंने ऐसा भी सुना कि बाबा ने कहा कि बाबा को इच्छा हो रही है कि बच्चों को गुलाब जामुन खिलाए, और 10 मिनट के बाद पता पड़ा, आपको किसी ने नहीं कहा और आप उठ के किचन में गए और 10 मिनट के बाद गुलाब जामुन स्टेज पर आने लग गया। कुछ ऐसा एक अनुभव आप सुनाए जो हमें बहुत प्रेरित करता हो।
अब बहुत सारी बात है आपने अचानक पूछी है, तो एक ऐसा अनुभव जो सबके काम आएगा, बाबा से बहुत मिलना होता था, व्यक्त बाबा से, जैसे आपने कहा किचन में होने के कारण बहुत बड़ा ही प्यार था बाबा से, तो एक बड़ा अच्छा अनुभव याद आ गया अचानक, सुना तो दूसरा रहा था। बाबा अपने कमरे में आए थे, उन दिनों ऐसा ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं चलता था जैसे आजकल चलते हैं, तो कोई बहन किसी किसी को जो आए थे उनको मिला रही होगी, और बाबा ने अचानक लच्छू दादी को कहा कि सूर्य को बुलाओ, और हम सो गए थे, तो वो ना आई बाहर से आवाज देते हुए मेरा नाम लेकर, चलो बाबा बुला रहा है। अभी रात हो गई थी तो वहां तो सीधी आ नहीं सकती थी, बुला रही जोर से, तो वल्लभ भाई थे मेरे साथ और हम दोनों जो कपड़े पहने थे, नेपाली सोल डाली, उन दिन ऑफिशियल कुछ नहीं होता था कि बाबा है कोई सफेद कपड़े पहन के बन ठन के जाना है, कुछ नहीं, पहुंच गए बाबा के सामने। अब वंडरफुल बात ये थी कि जब हम बाबा के सामने पहुंचे, गुलजार दादी के तन में बाबा बैठे हैं और वहां कोई नहीं है, सोचो हम क्या थ्रिलिंग हो गई होगी हमारे मन में, कोई नहीं है। बैठ गए हम, बाबा ने दृष्टि दी, मुझे पूछा संकल्प तो नहीं आता, छोटी सेवा दे दी है। मैंने कहा नहीं बाबा, समर्पित हो गए आप, जो आज्ञा आपकी हम तो उस पे कुर्बान है, संकल्प बिल्कुल नहीं आता। तो मुझे बाबा ने तब कहा था कि मधुबन में बच्चों को दो चीजें मिलती हैं, एक बाप एक ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा भोजन अगर बहुत प्यार से और योगयुक्त होकर बनाया जाए, उन दिनों मुश्किल से 250 का हम बनाते थे, अगर योगयुक्त और बहुत प्यार से बनाया जाए तो एक बार भोजन बनाने का फल उतना ही मिलता है जितना 1000 को संदेश देने का। तो वाह, मैं तो देखता ही रह गया, थ्रिलिंग हो गई और ज्यादा। और भी कुछ कुछ बाबा ने कहा, बहुत अच्छी बात, और फिर कहा कुछ पूछना है, कोई नहीं आया तब तक, हम क्या पूछे। बाबा के सामने जाते ही तो वैसे ही सब कुछ भूल जाता था, कुछ समझ में ना आए हम क्या पूछें। फिर बैठे रहे, बाबा दृष्टि देता रहा, क्या क्या बात होती रही मुझे ज्यादा याद नहीं। तो बाबा ने कहा संकल्प नहीं करना है, अगर 400 का भोजन बनाओगे तो सबका 1% तुम्हें मिलेगा, तो 400% तुम्हारी रोज जमा होती हैं। कुछ अच्छी अच्छी बातें। दूसरी बात मैं कह रहा था, 72 में मधुबन के भाइयों की भट्टी हुई और प्रोग्राम बना कि एक एक भाई को बाबा से अलग मिलाया जाए। तो बाबा आए अपने कमरे में, हम 15 थे, तो टर्न आया मेरा भी, और उस दिन पहली बार बाबा सवेरे 3 बजे तक बैठे, शाम को 6:30 6:30 आ जाते थे, 3 बजे तक बैठे, तो मेरा टर्न आया। तो मैं तो योग ही योग करता था और कुछ नहीं, सेवा जो थी वो और योग। तो बाबा ने पूछा मेरे से, अब अकेले कोई नहीं वहां, बाबा और हम, तो मैं एक पेपर पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी लिख के गया था जो मेरे मन में उठते थे, मैं जो योग करता हूं वो ठीक है भी या नहीं, मेरा योग आप तक पहुंचता भी है क्या, जो भी कुछ मन में आता था सब पूछ लेना था मुझे। तो बाबा ने कहा जितना योग का चार्ट है, मेरा योग का चार्ट टॉप मोस्ट था, उतना ही ज्ञान का भी है। मैंने कहा नहीं, अब खुल गए थे बाबा से मिलते मिलते, मैंने कहा नहीं। मैंने साथ में उत्तर दे दिया जो भोले बच्चे देते हैं ना, आपने तो कहा निरंतर मुझे याद करो, मैं तो उसी में लगा हुआ हूं, ज्ञान की क्या जरूरत। बाबा मुस्कुराने लगे, बाबा नहीं कहते मेरी बात मुझे ही सुनाने लगते हैं बच्चे। तो मैंने वही कर दिया, लेकिन बाबा बहुत प्यार था ना बहुत ज्यादा, क्योंकि हंसी की बात सुना दो, आज भी मैं सोच रहा था कि हनुमान के लिए गायन है ना, सिया राम के काज संवारे, बहुत गाते हैं ना उसके लिए, मैंने कहा हमें भी बाबा ने ऐसा सुंदर मौका दिया, निमित्त बनाया, देखो शक्तियां उसने दी, कि उसका जो कार्य था बहुत, जिसके लिए बाबा को थोड़ा संकल्प चलता था किचन के लिए जब बाबा साकार में थे, वो कार्य बाबा ने हमें निमित्त बना के दिया और वो सफल हो गया तो मुझे बहुत खुशी रहती है। तो बाबा ने पूछा तो बाबा का बड़ा प्यार था हमसे, मुझे फील होता था बाबा सम्मान भी देते हैं। तो मैंने कहा नहीं, तो कहा फुल पास होना है तो चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स चाहिए, एक सब्जेक्ट में फुल मार्क्स हो बाकी में कम हो फुल पास तो नहीं होंगे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो कहा आज से ज्ञान मनन किया करो, बिल्कुल जैसे ना, और ये शब्द मेरे लिए वरदान थे, आज से ज्ञान मनन किया करो, जब भी भविष्य में चांस मिलेगा तुरंत अपने को सफल पाओगे। मुझे पता नहीं था मुझे क्या चांस मिलेगा, तब तो 76 में विनाश का खेल था ना, हमें क्या चांस मिलेगा, लुटा दो सब कुछ, देह को जला दो, यज्ञ सेवा में हड्डी हड्डी दे दो, ये नशा रहता था। तो बस अगले दिन से मैंने लिखना शुरू किया और वो लिखना मेरे लिए वरदान बन गया। तो आज तक मुझे अब क्लास आदि कराने के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता, वो वरदान काम करता है। ये बहुत अच्छा अनुभव रहा जिंदगी का।
भाई जी निश्चित रूप से ये तो वरदान ही है बाबा का, जो इतना अच्छा इंस्पायरिंग क्लासेस कराते हैं। पर हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपने ज्ञान मनन और स्पीच करने की जो शुरुआत की, तो निश्चित रूप से कोई तो रहा होगा जिसने आपको गाइड किया होगा, तो आपने कब से ये क्लास कराना शुरू किया और आपको किसने मार्गदर्शन दिया?
एक्चुअली दादी हमसे बहुत प्यार करती थी, आपको बताऊं 5 बार की जन्म में आती थी शुरू में रोज, क्योंकि हमें कुछ आता नहीं था, सिखाती थी सिंधी कड़ी कैसे बनाओ, हम जल जल्दी कर देते थे, कभी जला भी देते थे, चखती थी आके भोजन, नमक आता नहीं था हमसे, दादी 5 बार आती थी। तो दादी ने एक प्रोग्राम बनाया कि सबको भाषण करना सिखाना है, तो उसमें हमारा भी चांस आया। तो 3 बार मैंने स्टेज पर बोला, मुरली से पहले 10-10 मिनट बोलना होता था, तो बस 3 बार बोलने के बाद वो जो बोलने की बाबा से वरदान मिल गया, वो कला मेरे पास थी नहीं, वो उसमें मिली। लिखने का वरदान, लेख लिखने का दीदी मनमोहिनी से मिला था, उसकी भी एक घटना है। तो बस यहां से, और दादी हमें चांस देने लगी। दादी को क्या होता था, दादी की एक क्वालिटी जो मैं जीवन भर देखी और हम उससे जुड़े रहे, कि जिसमें जो योग्यता है दादी उसे यूज कराती थी। विदेशी आने लगे, अंग्रेजी जानने वाले थोड़ी बहुत, मैं बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलता था, सब भूल गया था बिल्कुल, पढ़ाई पूरी तरह 4 साल में भूल गई, 72 की बात है। 3 विदेशी आए, निर्वैर भाई और आनंद किशोर दादा। दादी ने मुझे बुलाया और कहा ये जो 3 आए हैं इनको रोज मुरली रिपीट करानी है मुरली के बाद। अब देखो बड़ा काम दे दिया, अब अंग्रेजी बोलनी नहीं आती ज्यादा। और मैंने अपने जीवन का नियम बनाया था, हाँ जी, मैंने दादी को कहा हाँ जी, और ये पहली चीज थी जहां से मुझे अंग्रेजी का वरदान मिल गया। फिर मैंने स्टडी तो जरूर की, जगदीश भाई का लिखा हुआ इंग्लिश का साहित्य, क्योंकि शब्दकोश चाहिए बहुत ज्यादा, केवल ग्रामर ट्रांसलेशन जानने से तो काम नहीं चलता, नए नए शब्द थे। तो दादी ने ये सब काम दिया। तो कुमारों की भट्टी हुई तो कुमारों से बहुत फ्रेंडशिप पहले से रहती थी, तो उन्होंने मांग की मेरी क्लास की, तो वो पहली क्लास थी मेरी और वो दादियां भी सुनती थी, सबने सुना हो बहुत अच्छा लगा, वहां से मार्ग खुला। तो पहले तो ऐसा होता था मास में एक क्लास मिल गई, 2 मास में एक मिल गई, फिर धीरे धीरे ये बाबा से पहले की मिल गई। फिर क्या हुआ था, दीदी मनमोहिनी के जाने के बाद, ये बात बहुतों को पता नहीं है, तो रात्रि क्लास बंद हो गई, लोग ऐसे ही बस घूम फिर के सोने लगे, बातें बातें करके रेडियो सुनते थे। दादी को बहुत संकल्प चलता था कि रात्रि क्लास होनी चाहिए, तो समाचार ही सुनाते थे, तो समाचारों में लोगों को रुचि नहीं रहती। फिर दादी ने ऐसे ही मुझे बुलाया और कहा तुम कराओगे, मैंने फिर हाँ जी कह दिया, और पहली क्लास में सबसे आगे आके बैठी दादी जी, सामने बैठ गई, छोटा तो हॉल हिस्ट्री हॉल और मैं क्लास कराने वाला, कुर्सियां नहीं होती थी यही संदलियां, लेकिन क्योंकि दादी से बहुत प्यार था और हम खुले हुए थे, तो मैंने सवेरे की मुरली पे चर्चा कराई जितना आता था और पॉइंट्स पूछी उन पे चर्चा कराई। दादी को बड़ा पसंद आ गया, दादी ने कहा रोज रात्रि क्लास तुम्हें करानी आज से। तो मैं जब तक ज्ञान सरोवर बना वो रात्रि क्लास में ही कराता था। तो ऐसे दादी की मेहरबानी, प्यार और उनकी एक क्वालिटी के वो दूसरों के टैलेंट्स को बढ़ाती भी थी और उनको यूज भी करती थी। इसलिए मुझे भी संकल्प रहता है कि ज्ञान सरोवर से कम 20 स्पीकर तो बन जाए, पुराने भाई भी और नए भाई भी।
जी बहुत अच्छा लग रहा है भाई जी का अनुभव सुनकर के, लेकिन घड़ी पर हमारा ध्यान जाता है तो थोड़ी निराशा होती है। अगर सुमन बहन जी की इजाजत हो तो हम 8:30 तक इस कार्यक्रम को रख सकते आप सब 8:30 तक सहमत हैं
जी? भूख भी तो लगेगी।
नहीं, भूख तो हम थोड़ी बर्दाश्त कर लेंगे क्योंकि इतने अच्छे अनुभव हमें बार बार सुनने को नहीं मिलते हैं। हमारा ये सौभाग्य रहा है कि शुरू के दिनों में भाई जी की हम सबको बहुत पालना मिली है, और टू बी वेरी फ्रैंक एंड ट्रू, शुरू के दिनों में चंदमणि दादी जी का तो खैर रहा ही है प्यार, पर क्लास करना अगर हम लोगों ने किसी से सीखा है तो आपसे और गीता बहन जी का बहुत योगदान रहा है। कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ स्टेज पर यहाँ बैठे हैं तो उसमें एक सबसे बड़ा योगदान आपका रहा है। इसमें हम इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं, और ये जो कार्यक्रम चल रहा है परिवर्तन पथ पर, इसका भी कहीं न कहीं यही लक्ष्य है कि हमारे ज्ञान सरोवर के भाई बहनों में कलाएं बहुत हैं, टैलेंट बहुत है, वो थोड़ा उभर करके सामने आए। देर न करते हुए एक अगला प्रश्न भाई जैसे ये पूछेंगे कि हमारे संस्था में कुमार कुमारियों की संख्या ज्यादा है, यहाँ भी बैठने वालों में कुमार कुमारी अधिक है, और कुमार के जीवन में, कुमारी के जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है दैहिक आकर्षण की। बाबा कहते हैं कि अगर ये दैहिक आकर्षण समाप्त हो जाए तो एक युवा किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। बेशक आप अभी जिस स्थिति में आयु के हिसाब से देखा जाए या जो आपकी एक उच्च आध्यात्मिक स्थिति है वहां तो इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से आप भी कभी हमारी स्टेज में थे। आप जब आए आपकी उम्र 18 साल की थी और आज आप 70 साल के हो गए हैं, आप भी युवा काल से गुजरे हैं। हमारा प्रश्न ये है कि अगर हमें इस दैहिक आकर्षण से ऊपर उठना है तो हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए?
देखिए, सबको ही गुजरना पड़ता है और प्योरिटी की एक लंबी यात्रा है, और उसमें जो कुछ किसी के साथ आता है वो हमारे साथ भी आया। शुरू में देख आकर्षण भी होता था, आयु छोटी थी, इच्छाएं भी हो जाती हैं, लेकिन एक चीज शुरू में ही समझ में आ गई बहुत जल्दी। 69 में मुझे समझ में आ गई कि दैहिक दृष्टि रहने से एकाग्रता नष्ट होती है। अगर हमें 8-10 घंटे योग तक पहुंचना है तो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने काफी अच्छी अच्छी प्रैक्टिस की, बाबा की उसमें गाइडलाइन मिली बहुत अच्छी, नो डाउट। ये सब्जेक्ट कोई 1-2 दिन का नहीं होता, दसियों साल मुझे लगे होंगे उससे पार होने में, चाहे स्वप्नों की प्योरिटी हो या और जो कुमारों को छोटी मोटी विघन आते हैं, पर योग की अच्छी लगन के कारण उनसे हम सहज पार होते गए। उसमें हमारे कुछ साथियों का भी अच्छा योगदान था, हमें ऐसे अच्छे साथी मिल गए थे शुरू से ही जो मेडिकली हमें कई चीज समझा देते थे, और मुझे एक चीज आयुर्वेद से समझ में आई हुई थी जो मैं पढ़ के ही आया था पहले से ही, कि हमारे अंदर जो शक्तियां बनती है यदि हम उनको ऊर्ध्वगामी करते हैं तो ये आकर्षण और ये स्वप्नों की ये पवित्रताएं धीरे धीरे समाप्त होती है। तो पता चला कि जो हम अपनी बुद्धि सेवा बात पर एकाग्र करते हैं या यहाँ करते हैं, इससे ये शक्ति ऊर्ध्वगामी माना राइज अप, ये ऊपर चलती है। तो मैंने इसकी बहुत अच्छी साधना की, लेकिन मुझे 10-12 साल लगा होगा जिनसे मैं इन सब चीजों से मुक्त हुआ। स्वप्न मेरे क्लीन हुए होंगे कम से कम 20 साल के बाद, बिल्कुल क्लीन, अच्छे स्वप्न में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। तो गाइडलाइन बहुत अच्छी मिली, और जैसे मैंने बताया बाबा की बहुत अच्छी अच्छी चीजें मुझे मिली। और बात 1982 की है जब हमारे यज्ञ में क्या चल रहा था कि हर वर्ष को हम एक विशेष वर्ष के रूप में मनाते थे, कभी गीता वर्ष, कभी प्रत्यक्षता वर्ष, कभी अव्यक्त वर्ष, कभी तपस्या वर्ष। तो मैंने 82 को प्योरिटी का वर्ष मनाया था और 12 मास के लिए 12 अच्छे पॉइंट्स रखे थे। उसमें जो मुझे डिवाइन अनुभव हुए देह से न्यारे होने के, प्योरिटी को नॉर्मल करने के, वो बहुत ही सुंदर थे। उसमें बाबा की मदद भी बहुत अच्छी मिली। तो 82 तक मेरा इस पर बहुत, मतलब बहुत अच्छी तपस्या जिसे कहते हैं प्योरिटी की, उस पर अभ्यास चला।
भाई जी, आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए काफी जाने जाते हैं, देश विदेश के लोग आपके पास आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, और उसका एक बहुत ही अनुकूल समाधान आपसे मिलता है, उनके जीवन की समस्याएं मिटती हैं, और टेलीविजन पर भी आपका जो समाधान प्रोग्राम रहा है वो काफी पॉपुलर रहा है। खास करके मैंने देखा है कि ज्यादातर जो लोग आते हैं आजकल वो ये इविल सोल्स वगैरह की ज्यादा समस्याएं लेकर के आते हैं, और मैंने जहां तक देखा है, मेरा जहां तक अनुभव है कि आप जो है इविल सोल्स आदि के बारे में आपको काफी एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं मधुबन में भी, और बहुत सारी इविल सोल्स का सामना करने को आपको मिला है, कोई ऐसा एक दो दृष्टांत हो तो आप बताएं।
बहुत मिला है, तो लोग कई मुझे सोचते हैं शायद सूरज भाई भी तांत्रिक है। नेचुरल है उनका सोचना। मैं एक सुंदर अनुभव सुना देता हूं। भोपाल की 7-8 दीदियां मेरे पास आ गई शांतिवन में, अभी जोन इंचार्ज भी थी और भी थे। मैं सोचा भाई मेरे पास आते रहते हैं भाई भट्टी का प्रोग्राम बनाने के लिए, तो मैं बड़ा ठीक है आओ। तब बहन जी ने सुनाया ये एक दीदी है टीचर, इसमें 7 आत्माएं आती हैं, तब भी आई हुई थी। अब इसको मुक्त करना है भाई, कैसे करें? अब मैंने कहा भाई मेरा तो ये खेल काम नहीं है। कहा नहीं नहीं आप मदद करो, योग से कोई दृष्टि दो इसको। वो आए थे दृष्टि दिलाने के लिए, क्योंकि उससे पहले एक ऐसी घटना हुई थी। एक सेंटर है जहां का अपना सरवण भाई है, कौन सा सेंटर है? राजीव। तो वहां की एक डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल आई थी शांतिवन में, किचन के उस तरफ रहती थी। शाम को आवाज हो रही, मैंने कहा क्या हुआ? तो बेचारी वो दीदी परेशान, इस तो इविल सोल ने पकड़ लिया है भाई जी, अब हम जाएंगे ये तो मुश्किल हो जाएगी, सबसे बड़ी डिसर्विस होगी, क्योंकि ये वेल नोन पर्सनालिटी है। मुझे भी औरों ने कहा इसको मदद करो, मैंने कहा भाई मुझे कुछ आता नहीं इन सब के बारे में, मैं क्या करूं? मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा इस चक्कर में। तो अगले दिन वो, अब मैं उस प्रिंसिपल को नहीं जानता था, वो बहन उसको लेके मेरे कमरे में आ गई, मैंने अंदर ही बैठा लिया, मुझे क्या पता था यही है। कहा भाई जी यही है वो। अरे मैंने कहा तुम मेरे कमरे में ले आई। खैर मैं डरता तो नहीं, मास्टर ऑलमाइटी का मैंने तुरंत अभ्यास किया 3 बार। मैंने कहा तुम ले ही आई का बहुत बड़ी डिसर्विस हो जाएगी, हमारा जीना मुश्किल कर देंगे शहर के लोग। तो मैंने बाबा का आह्वान किया और मैंने कहा अच्छा मैं इसे दृष्टि देता हूं, तो मैं देने लगा, ले नहीं ऐसे 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 ऐसे। मैंने कहा आप इसका सिर पकड़ लो पीछे से। उसने कहा नहीं अच्छा मैं लेती हूं। फिर भी उसने सिर पकड़ा, मैंने दृष्टि दी, बाबा को मैंने बुला लिया था, मैंने कहा मुझे आता नहीं कुछ, अब ये भावना से आ गए हैं, अब आपको कुछ कर देना है। 1 मिनट दृष्टि दी और वो आत्मा निकल गई, और ये प्रिंसिपल, अरे भाई जी कहां हूं मैं, मैं ठीक हो गई। बहुत अच्छा अनुभव था, इसको देख के वो सुन लिया होगा कहीं से, भोपाल की टीचर में आत्माएं थी 7, सुमन बहन 7। अब मैं डरता नहीं हूं क्योंकि मास्टर ऑलमाइटी के अच्छे अभ्यास हैं, मैंने अभ्यास कर लिया अंदर अंदर। तो हंसी की बात सुनाऊंगा, मैंने कहा उससे मुझसे बात कराओ आत्मा से। एक प्रकट हुई, मैं आपका नाम, कहा मुझे भूल गए, हम और आप एक साथ ही तो समर्पित हुए थे, मैंने किसी कारण सुसाइड कर लिया था और ये हुआ वो हुआ। मैंने कहा भाई मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने कहा तो बाबा को कहो ना तुम्हें मुक्ति दिला दे, तुम्हें ज्ञान तो है। बाबा मेरी नहीं सुनता, आपकी सुनेगा, आप कहो। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अच्छा बोलो मेरा बाबा। 7 बार बुलवाया मैंने उससे, दृष्टि देता रहा, बहने देखती रही क्या हो रहा है, और वो आत्मा उसको छोड़ के गई। उसने एक बात तो कही थी, मैं इसकी सुरक्षा भी करता हूं, क्योंकि जो आत्माएं इसमें हैं उनमें से 2 बहुत क्रूअल हैं, वो इसे तंग करेंगी, इसलिए मैं जाना नहीं चाहता। मैंने कहा नहीं आप जाओ, उनको हम देखेंगे। गया वो बहने गई, अगले दिन वो तो फिर आ गई, वो बड़ी उन्हें खुशी हुई कि अब तो मुक्ति हो जाएगी। रूपेश भाई भी था, मैंने कहा रूपेश आओ बैठा है क्या अभी? मैंने कहा दूसरी से मेरी बात कराओ। तो बच्चा रो रहा है, मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली गई, मुझे उसके पास जाना है। मैंने कहा रूपेश देखो ये छोटा बच्चा है। वो खुश हो गया रूपेश को देखकर, कहा रूपेश को, उसने कहा मेरे से दोस्ती कर लो। रूपेश भाग गया, मैं नहीं दोस्ती करूंगा। तो मैंने उससे बात की, हम बाबा को कहते हैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास ले जाएगा। उसको मैंने 7 बार मेरा बाबा कहलवाया, रोना उसका बंद हुआ, वो भी मुक्त हुआ। और उसके बाद वो बाकी 5 भी मुक्त हुए। फिर वो मेरे पास आई थी, टीचर है अच्छी, मुक्त हो गई, नो इफेक्ट। ये बहुत अच्छा अनुभव
भाई जी। ये तो रहा किसी के माध्यम से इविल सोल से सामना। कभी किसी इविल सोल से आपका डायरेक्ट आमना सामना हुआ है?
नहीं ऐसा डायरेक्ट, क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ, इसलिए इविल सोल मेरे से डरती हैं। सच्ची बात है। मैं बता दूं आपको, ज्ञान सरोवर में एक कन्या बाहर से आई, उसके अंदर जिन था। जिन मोस्ट पावरफुल होता है, उसको कोई निकाल ही नहीं सका था। मैंने एक बार शांतिवन में उसको चार्ज करके भेज दे दिया, और वो उसने पहना, पहनते ही उसके शरीर से एक सन्यासी जैसा निकल के चलने लगा घूरते हुए। देखता हूँ ये तुम्हें कब तक बचाएगा। तो मैंने कहा इस बैज को रोज चार्ज करके पहनना, हो टीचर वाला बड़ा बैज ऐसा। वो आई ज्ञान सरोवर में, तो छोटा सा ऑफिस था पहले जो था, मैं बैठा था, वो आ गई। मैं उसको हंसी की, मैं कहा मैं तुम्हारे जिन को आज राजयोग सिखाना चाहता हूँ, बुलाओ। कहा वो तो निकल के वहां बाहर जो पिलर है ना किचन के, वहां खड़ा हो गया है। मैंने कहा क्यों? कहा मैं इनके पास नहीं जाऊंगा, मुझे जला देंगे। अरे मैंने उसे बात की, आ जाओ भाई, मैं तुम्हें जलाऊंगा नहीं, तुम्हारी मुक्ति का मार्ग बताता हूँ, राजयोग सिखा देता हूँ तुम्हें, क्योंकि मैं सिखा चुका हूँ एक दो को। तो वो आया नहीं, कहा इनसे तो आग निकल रही है, जला देंगे मुझे। एक डॉक्टर था बॉम्बे का, उसके तन में एक आत्मा आ गई थी, वो क्लास सुनती थी, तो वो उसको लाई, मुझे उनसे मिलाना है। तो नीचे आए वो, तो मैंने उसको फिर अच्छी तरह राजयोग सिखाया था, 2 बार आधा आधा घंटा लिया। वो आत्मा भी, जैसे आजकल कई कह देते हैं ना मैं बाबा हूं आपको ये कहानी सुना देता हूं, वो जब मैं उसे बात करने लगा, उसने मुझे बताया कि मैं भी इसको कहता था मैं बाबा हूं, फिर कहता था मैं श्री कृष्ण की आत्मा हूं। ये बड़ा खुश था, बाबा मेरे तन में आ गया। मैंने कहा फिर तुमने इसको तंग किया कि नहीं? मैं इसको तंग नहीं किया, इसकी प्रैक्टिस में इसको मदद करता हूं। तो ऐसी बहुत सारी आत्माएं अपने को बाबा कह देती हैं, और जो भोले लोग हैं ना वो कहते हैं हाँ बाबा आ गया हमारे घर में, तो इस कंफ्यूजन में नहीं रहता। ऐसी बहुत सारी मुझे इन आत्माओं से सामना होता है, और क्योंकि मैं डरता नहीं हूं इसलिए मेरे सामने नहीं आती।
भाई पता नहीं सही है या गलत, मुझे मालूम नहीं, अगर गलत हो तो माफ करिएगा, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि इविल सोल्स आपको फोन करती है, टेलीफोन करती
है। हाँ, नहीं ये इसमें माफ करने की बात नहीं, हंसी की बात सुना देता हूँ। फोन आया एक माता का, भाई जी मेरी लड़की में कोई आत्मा है, मुझे कुछ बता दो। मैंने माताओं को मैं कुछ विधि लिखाता हूँ, मास्टर सर शक्तिमान ऐसे करो, योग ऐसे करो, पानी चार्ज कर। मैं कहा डायरी पेन लाओ, मैं कुछ लिखाऊंगा। अब वो फोन उस लड़की को दे के डायरी लेने चली गई। माताओं के पास डायरी कहाँ घरों में, उसको 2-3 मिनट लग गए। उसने मुझे फोन किया, हेलो मैं चुड़ैल बोल रही हूँ। मैंने कहा ठीक है चुड़ैल हो ना, आत्मा तो हो ना, मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने बहुत पाप कर लिए हैं, मैंने इसे बहुत सताया है, मुझे मुक्त करो। सच, बिल्कुल सच्ची बात, बहुत दुखी होकर वो बोले। मैंने कहा तो तुम्हारी मुक्ति का एक ही मार्ग है, बाबा को जानती हो? शिव बाबा को? हाँ मैं जानती हूँ। मैंने कहा बस आज से तुम्हारा मंत्र है मेरा बाबा। मैंने 3-4 बार बोलवाया उसको मेरा बाबा। उन्हें बोलना शुरू किया, इतने माता आई, है क्या बात कर रही है। मैंने कहा नहीं ये बात पूरी हो गई, तुम्हें कोई लिखने की जरूरत नहीं, इसको मंत्र दे दिया है मेरा बाबा, अब इसको याद दिलाना। और उस माता का फिर फोन आया, वो भी मुक्त हो गई। ये चुड़ैल की बहुत अच्छी कहानी थी, चुड़ैल ने फोन किया था।
भाई जी आप अपनी क्लासेस में अक्सर ये कहते हैं कि हम सब योगी आत्माएं हैं और हम सबको अपने जीवन में कुछ सिद्धांत बनाने चाहिए, कुछ नियम बनाने चाहिए, अपने जीवन को कुछ सिद्धांतों में बांधना चाहिए, क्योंकि ये नियम हमें बहुत बल देते हैं। क्या आपने अपने जीवन के लिए कुछ ऐसे नियम सिद्धांत बनाए हैं?
बिल्कुल, मैंने 70 में ही बना लिए थे 10 नियम, और उन 10 नियमों ने सचमुच मुझे बहुत कुछ दिया है। जो ये हाजी करने का नियम था, इसने तो मुझे बहुत सारे वरदान दिलाए हैं, बहुत सारे डिवाइन अनुभव कराए हैं, बाबा की ओर से भी, दादियों की ओर से भी, क्योंकि मैं ना नहीं करता था, तो जो उन्होंने कहा वो मैं हाँ किया, और चीजें ठीक हो गई। कभी उनका वो काम देना मेरे लिए वरदान हो गया। तो मैंने ऐसे ही टाइम की, बाबा बहुत बात कहते ही हैं साकार मूल्यों में, दूसरा नियम बनाया था मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे बहुत वैल्यू रही है टाइम की, अभी भी है। और ऐसे ही नियम बनाया था मुरली, क्योंकि मुरली मुझे सबसे ज्यादा रस देती थी, मुरली मेरी जान रही है, मेरा अमृत वेला मिस हो जाए चला लेता हूं मैं, सारा दिन मैं अच्छा योग कर सकता हूं, लेकिन मेरी मुरली मिस हो जाए तो मुझे खाली लगता है, बड़ा रस मिला है मुझे मुरली का। ये सब नियम मैंने बहुत बनाए थे, नींद भी ज्यादा करते थे ना, बच्चे आए थे तो नींद भी 6 घंटे ही करेंगे, वो भी नियम बनाया, एक बार उठ के फिर सोएंगे नहीं, कभी 2 बजे आंख खुल जाती थी तो फिर सोते नहीं थे, कुछ नियम थोड़े भारी पड़े लेकिन अच्छे रहे बहुत, उन्होंने ताकत दी बहुत। इसलिए मैं सबको कहता हूं कम से कम 5 डिसिप्लिन जीवन के अवश्य होने चाहिए, उससे हम बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं।
8:30 का समय भी हमारे को कम पड़ रहा है, पर लास्ट में एक क्वेश्चन पूछ करके मैं इसको समाप्त करना चाहूंगा। मुझे एक बात याद आ रही है, ज्ञान सरोवर जब नया नया बना था 95 में, ओपनिंग तो इसकी हो गई थी, फिर भी बहुत सारा काम बाकी था, और दादियों, चूंकि ये पहला कॉम्प्लेक्स था, दादियों को बहुत ख्याल था, बहुत रुचि थी, रोज दादियां वगैरह यहां आती थी देखने के लिए, और उन दिनों भाई जी के ऊपर बहुत सारी जवाबदारियां थी, जैसा मैंने आपको बताया कि सबको समर्पित करने का आपको जवाबदारी दादी जी ने दिया था, किचन भी देखना था और भी बहुत सारी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो आकर के आपसे मिलते थे। उस समय एक घटना घटी, शायद आप भूल चुके होंगे, आपको ध्यान नहीं होगा, हम सब छोटे छोटे थे, जब भी दादियां उदय आती थी हम लोग घेर के खड़े हो जाते थे, तो किसी कारण से दादियां थी, चंदमणि दादी, बड़ी दादी और साथ में निर्वेर भाई भी थे, अब किसी कारण से, क्या कारण था मुझे याद नहीं है, निर्वेर भाई जी सूरज भाई जी को डांट रहे थे, लोग सामने ऐसे बैठे थे और भाई जी सामने खड़े थे और हम लोग बगल में कुछ 8-10 भाई खड़े थे, मैं भी उसमें था, तो मैं ये देख रहा था कि किसी कारण से निर्वेर भाई जी सूर्य भाई जी को डांट रहे हैं और भाई जी एकदम शांत चित होकर के उनकी बातें सुन रहे हैं, कोई जवाब नहीं, जहां देना है हल्के शब्दों में जवाब भी दे रहे, आपके फेस एक्सप्रेशन से ऐसा लगता था कि कुछ बातें आपको गलत डांटी जा रही हैं, आपके पास उसका उत्तर है फिर भी आप उसका उत्तर दे नहीं रहे हैं, एक बड़ा सामने है रिस्पेक्ट रिगार्ड, मैंने देखा कि ये आपके जीवन में एक वो सरलता, जैसे वो डांट करके उठे, बड़ी दादी जी ने एक कमेंट आपके लिए दिया कि सूरज तो सच्चा योगी है, ऐसा दादी जी ने बोला, सूरज तो सचमुच सच्चा योगी है। अब वो चीज घटना शायद आपको नहीं याद हो, आप भूल चुके होंगे, लेकिन मुझे याद है, मुझे इसलिए याद है कि मेरे जीवन में सरलता की बहुत कमी है और जिस चीज की कमी होती है आदमी उस पर ध्यान ज्यादा देता है, हमने देखा है एक लंबे समय से आपको देखा, आपके जीवन में सरलता कूट कूट करके भरी हुई है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये आपको जन्म से प्राप्त है या आपने इसके लिए कोई साधना की है?
ये 71 में बाबा की एक मुरली में 5 बातें आई सरल चित्त होने की, तुम सरल होगे तो तुम्हारी बीमारियां सरल होंगी, तुम सरल होंगे तो तुम्हारे संस्कार सरल हो जाएंगे, समस्याएं सरल हो जाएंगी, संबंध सरल हो जाएंगे, योग सरल हो जाएगा। तब से मेरा बहुत ध्यान गया और निष्काम होने पर मेरा ज्यादा ध्यान था, गीता पढ़कर आए थे उसके आधार पर भी, तो बाबा ने ये जो ट्रेनिंग दी फिर इसमें थोड़ी थोड़ी बातें अच्छी अच्छी मिलती गई, इसकी गहराई को तब हम इतना नहीं समझते थे, तब तो हमने बस समझा कि हमें सरल चित्त होना है, धीरे धीरे बुखार हुआ एक बार तो सरल चित्त रहना आया है, जाएगा, ठीक हो गया ऐसे कुछ कुछ खाने पीने से, तो सरलता के बहुत अच्छे अनुभव हुए। इस घटना की तो मुझे याद नहीं आ रही है क्योंकि मैं हर चीज को सरलता से लेता रहा तो सीरियस चीज मुझे भूल जाती है फिर से। अशोक भाई बैठे हैं, मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा, इनका ज्ञान सरोवर में सबसे ज्यादा योगदान था क्योंकि पहले से यही यहाँ आते थे और आपको पता है साइकिल भी किसी के पास नहीं होती थी, हमारे पैदल भी ये रात रात को जाते थे, मेरा काम तो फिर थोड़ा संभालने का था, सेटिंग करने का, और आपको पता है किचन के बहुत सारे हैंड हमने 1 साल पहले से रख लिए थे वहां 50, उन सबको वहां ट्रेंड कर दिया था, तो उस तरफ से हम बिल्कुल निश्चिंत थे। तो अशोक भाई का बहुत बड़ा, और हम दोनों साथी थे, एक को रूम में ही रहते थे और दोनों की रजौरी से ही हैं दोनों, तो फ्रेंडशिप भी अच्छी थी पहले से ही, तो मैं इनको भी बधाई देना चाहता हूँ अशोक भाई, बहुत आपका योगदान है। अब बेचारे थोड़े से शिथिल हो गए, इसका अर्थ ये नहीं, बहुत एनर्जेटिक। हमारा एक भाई कहा करता था, एयर फोर्स वाले नहीं फुल फोर्स वाले हैं। तो ये फुल फोर्स के व्यक्ति रहे हैं, और दीदी सुदेश इनकी भी टीचर रही है, तो बैठी हैं आज। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।
थैंक यू भाई जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। हम और भी आगे आपसे सुनते रहेंगे। अभी 2 मिनट हम बाबा को याद करके उठेंगे। ओम शांति।